So today we are reading from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhi Lila, chapter 8, text number 257.
तो हम श्री चैतन्य चरितमृत से पाठ कर रहे हैं मध्य लीला में आठवां अध्याय और श्लोक संख्या 257।
मुक्ति मुक्ति वंचे ये कहन दुकार गति,
मुक्ति मुक्ति वंचे ये कहा दुहार गति,
मुक्ति मुक्ति वंचे ये कहन दुनार द्वते,
मुक्ति मुक्ति वंचे ये कहा दुहार गति।
Clapping is not matching the drum. Mukti mukti vanche ye kahan tudvarat gate,
mukti mukti vanche ye kahan tudvarat gate,
mukti mukti vanche ye kahan tudvarat gate,
mukti mukti vanche ye kahan tudvarat gate.
Sarara deha deva deha yeche avastinti,
sarara deha deva deha
Stavara deha deva deha yaiche avastiti,
Stavara deha deva deha yaiche avastiti,
Mukti bukti vancha ye kahan dunara gati,
Mukti bukti vancha ye kahan duhar gati,
Mukti bukti vancha ye kahan duhar dikti,
Mukti bukti vancha ye kahan duhar gati,
Stavara deha deva deha yaiche avastiti, Mukti bukti vancha ye kahan duhar gati,
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 Stavara deha deva deha yaiche avastite,
Stavara deha deva deha yaiche avastite,
Mukti bukti vancha ye kahan duhar gati,
Mukti bukti vancha ye kahan duhar gati,
Stavara deha deva deha yaiche avastiti,
Stavara deha deva deha yaiche avastiti.
Next. Mukti bukti vancha ye kahan duhar gati, Mukti bhakti vanche ye kahan duhar gati, Stavara deha deva deha yaiche avastiti, Mukti bhakti vanche ye kahan duhar gati, Stavara deha deva deha yaiche avastiti,
Bhakti Adi Ye Kaha Dhuha Gati,
translation?
Anuvad.
And what is the destination of those who desire liberation and those who desire sense gratification?
Shri Chaitanya Mahaprabhu ne pucha. और जो मुक्ति चाहते हैं तथा जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हैं उनका गंतव्य क्या है?
So this is a question by Sri Chaitanya Mahaprabhu.
और ये प्रश्न श्री चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं.
Ramananda Roy replied.
रामनंद राय ने उत्तर दिया.
Those who attempt to merge into the existence of the Supreme Lord.
जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाने की चेष्टा करते हैं
will have to accept bodies like those of trees.
उन्हें वृक्ष के समान शरीर धारण करना होगा.
And those who are overly inclined towards sense gratification.
और जो लोग इंद्र तृप्ति में अधिक आसक्त हैं,
will attain the bodies of demigods.
उन्हें देवताओं का शरीर मिलेगा.
Purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Those who desire liberation by merging into the existence of God do not desire sense gratification within the material world.
जो लोग भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं उन्हें इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की इच्छा नहीं होती.
On the other hand, they have no information about serving the lotus feet of the Lord.
किंतु साथ ही उन्हें भगवान के चंद कमलों की सेवा करने का कोई ज्ञान नहीं रहता.
Consequently, they are doomed to stand like trees for many thousands of years.
अतएव उन्हें हजारों वर्षों तक वृक्ष की तरह खड़े रहना पड़ता है.
Doomed is a very strong word.
हालांकि इस यहाँ पर इस अनुवाद में तात्पर्य के अनुवाद में डूम शब्द नहीं लिखा लेकिन महाराज इंग्लिश के पर्पट में डूम शब्द
होपलेस सिचुएशन
मतलब जिसमें निराश
बिकॉज नॉट ऑल ट्रीज आर गोइंग टू बी एज फॉर्चूनेट एज नालकेरा Nalakavera and you know Manigriva, not all trees are going to be that fortunate to have Krishna come along and liberate them.
तो महाराज यहाँ पर बता रहे हैं जो भगवान के शरीर में लीन होना चाहते हैं उनको वृक्ष शरीर प्राप्त होता है. ये बहुत निराशवादी स्थिति है और हर वृक्ष जो वो बनेंगे वो नल कुबेर मणिग्रीव जैसे उनकी सौभाग्य नहीं होगा.
Doomed in the English language, doomed is an extremely heavy word.
तो अंग्रेजी भाषा में डूम शब्द का इस्तेमाल किया है जो कि बहुत भारी शब्द है जो कि बताता है कि वास्तव रूप में ऐसे लोग जो हैं वो
उनको
एक दुर्गति प्राप्त होगी.
नो टाइम कैलकुलेशन
और उसमें जो है समय का कोई गिनती नहीं होगी कितने समय तक जो है वो वृक्ष की शरीर को प्राप्त होगा.
श्री प्रभुपाद सेज दैट दीस ट्रीज हैव टू स्टैंड फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बट who can say the beginning and end of such duration.
और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे लोग जो वृक्ष बनेंगे कई हजारों सालों के लिए बनते हैं लेकिन कब शुरू होते हैं कब वो हजार साल खत्म होते हैं इसकी कोई गिनती नहीं
है. Although trees are living entities, they are non-moving.
यद्यपि वृक्ष जीवात्मा है फिर भी वे अचर है.
The liberated soul who merges into the existence of the Lord is no better than the trees.
जो मुक्त आत्मा भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं वे वृक्ष से अधिक अच्छे नहीं हैं।
Listen to the language carefully.
ध्यानपूर्वक जो भाषा बोली गई है यहाँ पर लिखी गई है उसको ध्यानपूर्वक सुने.
Liberated souls. See, you have to download each and every word.
आपको हर एक शब्द समझना है यहाँ पर मुक्त आत्मा की बात की जा रही
है. Generally, liberated souls means a very high position.
साधारणता मुक्त आत्मा बहुत ऊंची स्थिति है किसी को अगर मुक्ति मिल जाती
है. But here, liberated souls is stated to be a very low position.
लेकिन यहाँ पर तो उनकी स्थिति बड़ी नीची बताई गई है कि मुक्त आत्मा भी जो भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहती है उसको भी शरीर प्राप्त होता
है. Word liberation has confused philosophers for millions of years.
और देखा जाए इस तरीके से जो मुक्त शब्द है उसने कई दार्शनिकों को जो है वो भ्रमित किया हुआ है कई सालों से.
You know, there's two kinds of munis.
आप जानते हैं दो किस्म के मुनि होते हैं.
How many of you know the two kinds of munis?
कितने लोग दो किस्म के मुनि को जानते हैं हाथ खड़ा करें.
Hey, Mama, you don't know. Ajit knows. Wait a minute. There's a lot of semi-senior devotees here. you know, look at it. He always seems to know the answers, this Prabhu here, Rupa Sanatan. Let me see if I can squeeze it out of some other Prabhus here, you know. Sankarshan, you don't know the meaning? You didn't raise your hand. You did raise your hand. Okay. Can we squeeze it out of anybody else? Two kinds of munis. Do you know the two kinds of munis? You boys going yellow boy training? You don't not learn about the two kinds of munis? I think Morales, where's Morales? So somehow or other, this is not small words, you know. These are not small Sanskrit words. These are big words that are required in vocabulary.
So ye chote shabd hain ye Sanskrit bhasha mein, ye bade shabd hain jinki hamari baat cheet ho rahi hai.
Two words, muni and sthiti muni.
To do shabd ki baat ho rahi hai, muni aur ek sthiti muni.
There's vast difference.
Aur in dono mein bahut bada antar
between these two types of munis.
In do muni ke beech mein.
All right, Prabhu, what is the muni and sthiti muni? What is?
श्री गौर हरिप्रभु ने उत्तर दिया कि मुनि जो है वो काल्पनिक दर्शन में विश्वास करते हैं, सोच विचार में विश्वास करते हैं, लेकिन स्थिति की मुनि वो है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के शरीर के वो चिंतन करते हैं, भगवान की भक्ति क्रियाओं को अपनाते हैं।
So he indicated that these munis are these intellectual speculators.
Yes, Maharaj.
Intellectual speculators.
तो मुनि जो होते हैं वो जो है वो कल्प जो कल्पना पे विश्वास रखते हैं या मनोकल्पना करते हैं।
It's a disease that's been going on since time immemorial. Since the very beginning of the universe, this disease of mental speculation has been going on.
और ये जो बीमारी है वो सृष्टि के शुरू से ही है कि मनोकल्पना की कि हम जो है वो जो हमारे मन में विचार आते हैं उसी को धारण बनाकर उसको अपनाते हैं।
It's not new in the modern university system. The modern university system is simply chewing the chew. But this is going back for millions of years, this mental speculation business.
और ये जो मनोकल्पना वाला विषय है सिर्फ नए जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं सिर्फ उसी में नहीं होता है ये हजारों लाखों सालों से पहले से चलते आ रहा है।
So now you please try to understand what is a muni.
तो कृपा करके आप इस शब्द को समझे कि मुनि कौन होते हैं।
The whole modern educational system is based on munis.
और जितने भी आधुनिक विज्ञान हम सीखते हैं वो इसी विचारधारा पे स्थित है मुनि की विचारधारा पर।
मुनि does not mean a learned sage.
मुनि का मतलब एक विद्वान नहीं है।
मुनि means a type of ज्ञानी but less than ज्ञानी।
मुनि का मतलब एक ज्ञानी होता है लेकिन वो ज्ञानी से नीचे होते हैं।
So the signature quality of muni is very important to understand, and you write this down. The signature quality of a muni.
जो मुनि का एक विशेष गुण होता है कृपा करके लिखें महाराज अभी उसका वर्णन करेंगे।
जय श्री श्री राय कृष्ण बलराम हरि
बोल। भगवान की श्री कृष्ण बलराम की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।
The signature quality of a muni is that no two munis can agree. They can't agree.
हर एक मुनि की जो अद्भुत पहचान ये होती है कि दो मुनि की एक विचारधारा नहीं होती वो आपस के अपने मत के बीच में उनका कोई समझौता नहीं होता एक दूसरे के मत को नहीं मानते।
So here you have the modern education system.
और यहीं पर ही आपका आधुनिक जो विज्ञान की प्रणाली है वो भी कुछ ऐसी।
You've got professors all over the world.
आपके अलग अलग जो है वो अध्यापक पूरे विश्व भर में है।
And they're supposed to write something and get it published internationally.
और उनको कुछ ना कुछ नया लिखना होता है उसका प्रकाशन करना होता है विश्व भर में।
It doesn't matter what kind of rubbish they write, really it doesn't. It just they have to write something, some novel, something unique, something not heard before.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो भी वो लिखे कितना व्यर्थ क्यों ना हो लेकिन हाँ वो अलग होना चाहिए हटके होना चाहिए ऐसा कुछ जो कि पहले नहीं लिखा गया हो ना सुना गया।
Some new novel theory.
एक नया सिद्धांत, एक नई सोच.
It could be complete rubbish.
और वो बिल्कुल बकवास हो सकता है.
It doesn't matter. They publish it. They get a publisher. They publish it. Gets circulated in the academic community all over the world.
हो सकता है जितने भी विद्वान के समूह हैं उसके बीच में उनकी विचारधारा जो है वो लोग उसको पढ़ें, लेकिन वो एक तरीके से देखा जाए तो बकवास ही होता
है. Some fools masquerading as professors say, "Oh, this is very wonderful."
कभी कभी ऐसा होता है कि विद्वान के रूप में कुछ मूर्ख जो है अपने आप को विद्वान दिखाकर उसकी प्रशंसा करते हैं.
Dr. Frog's presentation is very impressive. Very impressive.
और वो कहते हैं कि जो डॉक्टर फ्रॉग हैं उनका जो उन्होंने प्रस्तुति दी है वो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है.
So the more praise comes in, the more money the university collects.
और जितनी उनकी प्रशंसा होती है उतने वो विश्वविद्यालय से पैसे लेते हैं.
So in America it's called publish or perish.
तो अमेरिका में कहते हैं या तो आप कुछ प्रकाशन कीजिए नई चीज, नहीं तो आप खत्म हो जाइए.
I heard the universities are just now introducing this in India, is that true?
और मैंने ऐसे सुना है कि हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में भी ऐसा ही कुछ प्रणाली शुरू हुई.
Professor wants to remain with the university, he must publish rubbish. So he can get a claim, so he can bring a claim to the university. Doesn't matter, a complete rubbish, stool, philosophy, doesn't matter, bogus theories, doesn't matter.
तो आज हम देखते हैं कि चाहे वो कुछ भी बकवास है, कुछ भी मलमूत्र जैसा भी कोई सिद्धांत हो, लेकिन अगर हाँ, अगर उन्होंने कुछ उन्होंने उसको प्रकाशित किया है तो बस उनकी फिर जो है वो मान्यता है उस विश्वविद्यालय में.
But if some professors around the world say, "Oh, this is very wonderful," then the university is pleased and he gets points for that.
और बाकी अध्यापक जितने भी विश्वविद्यालय के, कि अगर वो उसकी मान्यता देते हैं तो बस विश्वविद्यालय भी उनको मानता है और उनको तनख्वाह देता है.
So it's called publish or perish.
तो उसका ये जो है ये प्रणाली है कि या तो आप कुछ ना कुछ नया छापिए, प्रकाशित कीजिए, नहीं तो जो है आपकी कोई कीमत नहीं. तो ऐसा व्यक्ति मुनि है.
So here we see how the modern scientists and so-called educators all munis.
तो हम देखते हैं कि जितने भी आधुनिक वैज्ञानिक हैं, जो अध्यापक हैं, वो इस दृष्टिकोण से भी मुनि हैं.
Because I want to remind you that Muni does not mean learned sage. Did you already write that down? Muni does not mean learned sage.
इस बात को समझ लीजिए और लिख भी लीजिए.
Automatically.
कि मुनि एक विद्वान ऋषि नहीं होते.
The real
मनोकाल्पनिक व्यक्ति हैं.
The actual learned sages are stility munis. That's the distinction.
जो विद्वान भक्त हैं, जो विद्वान ऋषि हैं, वो वास्तव रूप में स्थितिदि मुनि हैं. उनमें और मुनि में अंतर.
Stility munis, as Prabhu pointed out, they are situated on the transcendental platform. They are not mixed with the most material nature. Never.
So stility muni hain, wo teenon gunon se upar hain. Wo adhyatmik star par sthit hain. Wo baki muni se alag hain.
Oh, stility munis are philosophers, certainly.
Stity muni nishchit roop se darshanik bhi hote hain.
But they do not present even one word of speculation.
लेकिन वो एक शब्द भी मनोकल्पना से पैदा नहीं करते.
They simply repeat the previous acharyas.
उनका एक ही कर्तव्य है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्हीं के शब्द वो दोहराते हैं.
And often times, if they are fully self-realized souls, nitya siddha devotees.
और साधारणतः अगर वो नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के, या पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार उनको प्राप्त है,
they write on their revelations, repeat the previous acharyas, but they write on their revelations.
तो अगर वो उनको आत्मा साक्षात उनका हुआ हुआ है या नित्य सिद्ध भक्त हैं, तो पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्दों को दोहराने के साथ साथ वो अपने साक्षात्कार का भी विज्ञान देते हैं.
Classic example of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur.
और इसका एक उज्ज्वलत उदाहरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है.
Who is a good example of a stility muni?
और वो एक आदर्श उदाहरण है स्थितिदि मुनि के.
A pure sage.
और एक शुद्ध भक्त.
And so many commentaries is written by revelation, not just repeating, but by revelation what is revealed to him. And our Goswamis also, Shri Rupa Goswami, Jiva Goswami, also Krishnadasa Kaviraj Goswami, they not only write on what they have heard from previous acharyas, but they write on revelation also.
और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जितने भी अन्य टीका दिए हैं वो सिर्फ पूर्ववर्ती आचार्यों के बातों को दोहराया भी है और साथ साथ हमने साक्षात्कार को भी लिखा है। उसी तरीके से बाकी अन्य भी ऐसे कई ऐसे वैष्णव आचार्य रहे हैं जैसे श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी अन्यथा ऐसे कई ऐसे वैष्णव आचार्य रहे।
If you look carefully at how they're writing, you will see that they're frequently writing from revelation, not just book knowledge, but from revelation.
Srila Bhaktivinoda Thakur ji ne bhi aisa likha hai ki unhone apne sakshatkar ke aadhar par unhone kai granth likhe.
For example, Srila Bhaktivinoda Thakur has written that famous song about Krishna sitting down with his coward boyfriends taking lunch.
और जो भोग आरती है जिसमें कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों के साथ बैठकर प्रसाद ले रहे हैं तो वो एक ऐसा उदाहरण है भक्ति उठाकर का जिन्होंने हमें साक्षात्कार से लेकर वो लिखा है।
Sri Gaura Hare, so he goes to Vihari.
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 Vajabhakata Vatsala, Sri Gaura Hare.
Vajabhakata Vatsala, Sri Gaura Hare.
Vajabhakata Vatsala, Sri Gaura Hare. Thakur Bhaktivinoda is that writing this as a theory.
Bhaktivinoda Thakur jo hai wo ek isko ek theory ke roop mein ya sirf kuch
he's seeing the whole picture by revelation.
Aur wo pure drishya ko dekh rahe hain, unko aisa drishya jo hai dikhai de raha
hai. He's there. He's seeing the coward boys taking lunch with Krishna and he's describing what he sees. It is not simple book knowledge, no.
ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को ग्वाल बालों के साथ भोजन करते हुए और जो दृश्य देख रहे हैं उसको वो लिख रहे हैं।
So we have many acharyas.
और ऐसे बहुत सारे आचार्य
who have written like that on their revelations.
और उन्होंने अपने साक्षात्कार पे कहीं ऐसे ग्रंथ लिखे।
Our own Srila Prabhupada also writes, inserts his revelations into his purports.
और श्रीला प्रभुपाद जी भी ऐसे उन्होंने कई टीकों में अपने साक्षात्कार लिखा।
But because Srila Prabhupada wrote with an extreme sensitivity to establishing this movement within Guru Parampara.
और श्रीला प्रभुपाद जी ने जितने भी टीका लिखी हैं बहुत ही संवेदनशील होकर ध्यान रखकर कि ये जितने भी उनकी टीका हैं गुरु परंपरा के अंतर्गत हो।
So mainly he would quote prolifically from the previous acharyas.
इसलिए वो अधिकांशता पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका को ही उद्धृत करते थे।
And in Srila Prabhupada's room in Los Angeles, you can see the original Sanskrit books that he used as his reference books.
और जो श्रील प्रभुपाद जी का रूम है लॉस एंजलिस में, वहाँ पर आप पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं।
श्रील प्रभुपाद's room is preserved as a museum.
और प्रभुपाद जी के रूम एक म्यूजियम के रूप में वहाँ पर उसका ध्यान रखा गया।
Carefully monitored.
और उनका ध्यान पूर्वक उस कमरे का देखभाल होती है।
The big, big books with all the writings by the Goswamis, writings by Vishwanatha Chakravarti Thakur, and actually all the major acharyas, some of those books are, 4 inches, 5 inches thick.
और वहाँ मोटी मोटी किताबें जो छह गोस्वामियों के द्वारा पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा वहाँ पर आपको मिलेगी जो कि 6 इंच तक मोटी।
So he was impeccable in quoting the previous acharyas in order to establish this Krishna consciousness movement.
और बिना गलती रहित उन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों को जो है उनका टीकाओं का उद्धरण किया अपनी टीकाओं में।
So certainly Srila Prabhupada was also a Siddhi Muni.
और निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी भी सिद्धि मुनि थे।
So yet these munis sometimes they desire liberation.
और मुनि कभी कभी जो है मुक्ति की इच्छुक होते हैं।
But here Prabhupada is saying they are doomed to stand like trees.
और ऐसे मुनियों को जो है वो वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है।
Although trees are living entities, they are non-moving.
हालांकि वृक्ष जीवात्माएं होती हैं, लेकिन वो अचर होती हैं।
The liberated soul who merges into the existence of the Lord
जो मुक्त आत्मा भगवान के अस्तित्व में समा जाना चाहते हैं
is no better than the trees.
वह वृक्ष से अधिक अच्छे नहीं है.
Trees also stand in the Lord's existence.
वृक्ष भी भगवान की सृष्टि में खड़े हैं.
Because the material energy and the Lord's energy are the same.
क्योंकि भौतिक शक्ति तथा भगवान की शक्ति एक ही है.
Similarly, the Brahman effulgence is also the energy of the Supreme Lord.
उसी तरह ब्रह्म तेज भी भगवान की एक शक्ति है.
It is the same whether one remains in the Brahman effulgence or in the material energy.
अतः चाहे कोई ब्रह्म तेज में रहे या भौतिक शक्ति में, दोनों एक से हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं होती.
Because neither is there spiritual activity.
और जैसे मैंने कहा कि किसी में भी इन दोनों में से किसी में भी आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं रहती.
So jnanis are after liberation.
और ज्ञानी जो है वो मुक्ति चाहते हैं.
But here the indication is liberation is then really fourth class. Without devotional service, liberation is fourth class.
और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि बिना भक्ति के मुक्ति जो है वो एक तरीके से निकृष्ट है.
That's such a heavy statement that merging into Brahman is no better than becoming a tree. I mean, that's a very heavy, strong statement that Sri Prabhupada is making.
देखा जाए बड़ा गंभीर वाक्य है कि कोई अगर मुक्ति की इच्छुक है जो भगवान के शरीर में लीन होना चाहता है उसको जो है एक वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है. देखा जाए तो बहुत गंभीर विषय.
Only a pure Vaishnavacharya could dare to say that because the vast majority of jnanis, yogis, other tyagis, they are after liberation. The majority are after liberation, not after Krishna, certainly not.
और अधिकांशता ज्ञानी मुक्ति जो मुनि हैं वो अधिकांशता मुक्ति ही चाहते हैं.
So then there's not much credit for this.
लेकिन इसमें कोई ज्यादा कोई श्रेय नहीं.
Either way, they're going to have to come back to additional births in the material world.
दोनों किसी में उनको इस भौतिक संसार में आके जन्म लेना पड़ेगा.
Because those that succeed in entering into Brahmajyoti in the spiritual world, after some duration, we can't exactly say time because there's no time in the spiritual world.
तो जो व्यक्ति कामयाब भी हो जाते हैं भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होने में जो है, लेकिन कुछ समय बाद, लेकिन हालांकि आध्यात्मिक जगत में समय नहीं होता इसे बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ देर बाद.
So after some duration, Srila Prabhupada makes it crystal clear that those atmas become dissatisfied. Although they're in sat and chit, they're situated in eternally and knowledge, but no ananda. So they become dissatisfied at some point in spiritual space. Brahman means spiritual space.
और जो भगवान के भ्रम में लीन हो जाते हैं कुछ देर बाद जो है, क्योंकि उनमें कोई भगवान के चरणों में वो कोई क्रिया नहीं करते, भक्ति नहीं करते, तो सच तो उनको प्राप्त होता है लेकिन आनंद प्राप्त नहीं होता, तो कुछ दिनों के बाद जो है वो कुंठित हो जाते हैं.
So then it is Prabhupada makes this point, if you read in Prabhupada's books, you must have read that sometimes they go from Brahman effulgence and they're bored up there. They're bored. It's boring.
और जब वो ब्रह्म में लीन भी हो जाते हैं लेकिन वहां पर जो है वो बोर हो जाते हैं या उनको अच्छा नहीं लगता वहीं पर रहने में.
So then Prabhupada writes, in other words, they cannot be fully aparama. They can't be fully aparama up there. Even though it is free from material influence, but they cannot be fully. They can only be partially aparama, but it's not really, because aparama means fully satisfied in the self, and they can't be. They're already situated in self as a vibrating particle, but they cannot be satisfied.
हालांकि वो तीनों गुणों से ऊपर चले जाते हैं और आत्मा के स्तर पर हो जाते हैं, लेकिन वो आत्माराम नहीं बन पाते, पूर्ण रूप से वो आत्माराम की स्थिति पर नहीं आ पाते.
So because they're not satisfied, so after some time, the merciful Lord Vishnu detects that they're not satisfied, even though they're vibrating in Brahman.
तो क्योंकि वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो कुछ देर बाद भगवान विष्णु देखते हैं कि वो स्थिति में संतुष्ट नहीं है.
There's no form in Brahman, just the jivas are vibrating particles. Write that down. The jivas are merely vibrating particles, nothing more. The Brahman is made up of unlimited vibrating effulgent particles of jivas. That's all. It's not solid, so to speak. It's a, in other words, collage. There's a collage of unlimited vibrating effulgent jivas that are emanating from the body of the Supreme Personality of Godhead.
और ब्रह्मन क्या है कि ब्रह्मन कोई स्थूल चीज नहीं है. ब्रह्मन जो है वो अनंत जीव, जो हिलते डुलते जीव हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, उसी को ब्रह्मन बोलते हैं.
But because they're not actually fully up Brahma, so after some time the Lord detects their desire to do something because it's boring up there.
और क्योंकि वो आत्मराम की स्थिति में नहीं आ पाते और वहां पर जो है वो परेशान हो जाते हैं, तो फिर भगवान कुछ उनके लिए सोचते हैं.
But they're not qualified to do something in the spiritual world. For that you have to have a spiritual body. To have a spiritual body you have to have connection with a pure devotee. There is no other way to get a spiritual body except by contact with a pure devotee. Write it down. You cannot just pull spiritual body out of the sky. No.
तो ऐसे लोगों को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त नहीं होता, क्योंकि इसलिए वो आध्यात्मिक जगत में जाने के योग्य नहीं बनते. और आध्यात्मिक शरीर क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उनको शुद्ध भक्त का संग प्राप्त नहीं होता. तो कृपा करके महाराज कह रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त का संग प्राप्त करना अनिवार्य है.
You have to be awarded, you can only be awarded a spiritual body by the mercy of a devotee or multiple devotees. Nasteva.
और आपको आध्यात्मिक शरीर जो है वो तोहफे के रूप में प्राप्त तभी हो सकता है जब आप एक शुद्ध भक्तों एक शुद्ध भक्त की कृपा हो या कई शुद्ध भक्त की कृपा.
So the pure devotees of the Lord, they don't hang out in a Brahmajyoti. So they don't hang out in a Brahmajyoti. They have no interest in a Brahmajyoti.
और शुद्ध भक्त जो है उनकी कोई रुचि ब्रह्मज्योति में नहीं होती, ना वो वहां पर रहना चाहते हैं.
That's proven in the Sri Ishopanishad.
और ये साबित किया गया है श्री इशोपनिषद में.
How many of you know where in Ishopanishad? First of all, how many of you have read Sri Ishopanishad?
और कितने लोगों ने श्री इशोपनिषद पढ़ा है, कृपा करके हाथ खड़ा करें.
That's not too bad. Sometimes I do these surveys, as I travel in different places around the world, I do these surveys, and the results are terrible sometimes. Terrible.
तो महाराज कह रहे हैं, मैं अधिकांशतः कई जगह जाता हूं और मैं ऐसी चीजें पूछता हूं और मुझे पता चलता है जो परिणाम मुझे मैं देखने को मिलता है वो बहुत खराब होते हैं.
So it's to the credit of Rukmini Krishna Prabhu and Murali and other trainers that have been at least come this far in knowledge.
तो ये श्रेय हिजबेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी को, हिजबेस मुरली कृष्ण प्रभु को जाता है कि कई भक्त जो है वो इसमें प्रशिक्षित हैं और उन्होंने ये किताब पढ़ी है.
Sri Ishopanishad is a very important book.
Sri Ishopanishad is a very important book.
It's one of the first books translated by Srila Prabhupada in 1969. He translated, he stopped translation of the Bhagavatam and translated the Ishopanishad and got it printed and distributed as early as
1969. And this is one of the earliest books that Prabhupada had translated. 1969 में इशोपनिषद और श्रीमद् भागवत.
We used to sit in class and we would recite the shlokas out loud.
और हम अक्सर क्लास में बैठते थे और उनके श्लोकों का उच्चारण करते थे.
Very thrilling actually.
और हमें बहुत अच्छा लगता था, बहुत उत्साह होता था.
So who knows which part of Ishopanishad that I'm indirectly referencing here?
और किसको पता है इशोपनिषद में जहां जो मैं बात कर रहा हूं कि शुद्ध भक्त जो है वो भ्रम तेज में रुचि नहीं रखते, ये इशोपनिषद में कहां हमें प्राप्त होता है, कृपा करके हाथ खड़ा करके बताएं.
ऑलराइट प्रभु, यस. He's saying I can't hear. remove your effulgence so I can see. It doesn't say lotus feet. Did you say lotus feet? Doesn't say lotus feet.
Face. I can see your form. But if you remove, this is what you see.
Yes. Please remove your dazzling effulgence so I can see your form of bliss. That's the actual language. Yes. Form of bliss. In other words, Satchidan Vigraha. The answer is correct. Haribol!
तो अजीत गुरुप्रभु ने ठीक उत्तर दिया कि ईशोपनिषद मंत्र 15 में भक्त जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपा करके अपने जो भ्रम का तेज है उसको आप हटाइए ताकि मैं आपके सच्चित आनंद रूप को का दर्शन कर सकूं.
There we see that the devotees have no interest whatsoever in the effulgence. They want the Lord to remove the effulgence. If they have to encounter it, they want him to remove it, dissipate it, so they can see his form of bliss. That's Vaishnava.
तो भगवान का जो आनंद में रूप है उस भक्त जो है उसको देखना चाहते हैं इसलिए वो भ्रम तेज जो चाहते हैं कि भ्रम तेज हटे ताकि वो रूप का दर्शन कर सके इसलिए भक्त जो है वो भ्रम के तेज में भगवान के में रुचि नहीं रखते.
The amazing thing is that Prabhupada is saying that the Brahman effulgence is also the energy of the Lord. It's the same whether one remains in the Brahman effulgence or in the material energy. That's an astonishing statement. Whereas the Gyanis are so proud of the idea of entering into Brahman, but here Prabhupada is saying, what's the point? It's no better than being in the material world. This is really amazing.
तो बहुत विस्मय करने वाली बात यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं. ये लिख रहे हैं कि जो अतएव चाहे कोई भ्रम तेज में रहे या भौतिक शक्ति में दोनों एक से हैं क्योंकि इन दोनों में से किसी में भी आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं होती. तो ये बहुत ही चौंकाने वाले वाक्य है कि भ्रम तेज और भौतिक शक्ति को प्रभुपाद जी एक स्तर पे ला रहे हैं.
In neither the Brahman effulgence nor the spiritual material world is there any spiritual activity. Therefore, it's all zero.
तो क्योंकि इन दोनों में चाहे कोई भ्रम के तेज में हो चाहे भौतिक शक्ति के अंतर्गत हो इन दोनों में आध्यात्मिक क्रियाशीलता नहीं होती इसलिए दोनों जो है वो जीरो शून्य के समान.
The next statement is also in the 1960s we used to call mind blower. That's I'm from the 1960s generation, you know, language vocabulary is not used much anymore.
1960 के दशक में जो है साधारणतः कहा जाता था कोई ऐसे वाक्य होते जो मन को उड़ाने वाले होते थे.
But I think you get the concept of what mind blower means, okay? It just like blows you off. Holy cow, wow, that's amazing. That's called a mind blower.
तो कुछ ऐसे वाक्य होते थे जो मन को उड़ाने वाले होते थे तो इसमें कुछ सुनकर जो है बहुत विस्मित हो जाता था. ऐसे ही वाक्य जो है प्रभुपाद जी अगला वाक्य में लिख रहे हैं.
So listen carefully because Prabhupada just saying that he's just talking about those that are chasing after Brahman and merging into the Lord or if they're less fortunate, you see they become trees. I mean, if they actually make it up to the spiritual world, they're more fortunate than those become trees, sort of.
तो क्योंकि ऐसे लोग जो भ्रम में लीन होना चाहते हैं भ्रम तेज में ना चाहते हैं उनको विश्व शिविर प्राप्त हो जाता है इसलिए इसमें कोई ज्यादा महत्व नहीं.
At least in the spiritual world, you don't have a dog passing urine on you, you know. So there's some advantage of being in the spiritual world in Brahman effulgence. Although Prabhupada is saying it's the same, but at least you won't have a dog passing urine on you. That's, how much advantage is that, you know?
तो प्रभुपाद जी यहाँ पर भ्रम तेज को भौतिक शक्ति से करते हैं. भौतिक शक्ति में तो आप देखते हैं कि एक यहाँ पर एक कुकुर भी जो है हो सकता है आप मूत्र त्याग दे लेकिन आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक लोक में ऐसा नहीं ऐसे होने की संभावना नहीं.
So here we have the mind-blowing statement now.
और यहाँ पर जो मन उड़ाने वाला वाक्य
Better than those who are situated in Brahman effulgence or trying to enter into the Brahman effulgence. No. I'm paraphrasing. Better than those who are trying to enter into the Brahman or have succeeded in entering into Brahman.
तो जो लोग सफल हो गए हैं भ्रम तेज में लीन होने से उनसे ज्यादा अच्छा है.
Now what Prabhupada has written? Better situated. This is astonishing. If you want to use a different word, the word is astonishing. Off the charts, astonishing.
और बहुत ही आश्चर्यजनक वाली बात है.
Better situated are those who desire sense gratification. Holy cow!
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भ्रम में लीन होना चाहते हैं उनसे ज्यादा अच्छा इंद्र तृप्ति की इच्छा करने वाले या स्वर्ग स्वर्ग लोग जाने वाले जो लोग हैं वो
write it down. You don't know these things.
में लीन होने वाले व्यक्तियों से ज्यादा अच्छे.
You don't know these things.
तो शायद आपको बातें नहीं पता होंगी इसलिए आप लिख लीजिए इसको.
Person after sense gratification who wants to be and the next statement is who desires sense gratification, they want to be promoted to the heavenly planets, are better situated than these those that are after Brahman. That is amazing.
और बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्य और विस्मय करने वाला वाक्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उन लोगों से जो भ्रम तेज में रहना चाहते हैं वो लोग हैं जो इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं या फिर स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं.
So Srila Prabhupada continues, such people want to enjoy themselves like denizens of heaven in the gardens of paradise.
ऐसे लोग उसी तरह भोग करना चाहते हैं जिस तरह नंदकानन में स्वर्ग के निवासी भोग करते हैं.
They at least retain their individuality in order to enjoy life.
वे जीवन का भोग करने के लिए कम से कम अपनी पहचान तो बनाए रखते हैं.
Another point is that upon the heavenly planets there are a lot of they're devotees of Lord Vishnu, so there some spark of bhakti may arise as a result of association with sadhus, Brihamuni and other sages and Vaishnavas on heavenly planets. Some spark of bhakti may arise because, and sometimes they even getting the they come, they even get the darshan of Lord Vishnu.
तो जो लोग स्वर्ग जाते हैं उनका एक अच्छा भाग्य हो सकता है कि स्वर्ग में जो है भगवान के कई भक्त हैं जैसे भृगु मुनि हैं और कई ऐसे ऋषि हैं जो कि स्वर्ग लोक में रहते हैं, तो उनका संग उनको प्राप्त हो सकता है जिससे उनके हृदय में एक भक्ति की चिंगारी पैदा हो सकती है.
We know from the narration of the story of Daksha and his specialty was producing huge yagnas. And Lord Vishnu would personally come out of mercy and kindness. Lord Vishnu would personally attend, and all the devas, at least the chief devas, they would come, sit down, take their portion of sacrifices, you know. So they can come to such, you know, big, big social events, like spiritual, religious social events. They can attend those things. So some contact with Lord Vishnu may be there, but still they may fall.
तो हम जैसे उदाहरण देखते हैं भागवतम में वर्णन आता है जैसे दक्ष जो है वो प्रसिद्ध है बड़े बड़े यज्ञों को करने में और ऐसे यज्ञ में भगवान श्री विष्णु स्वयं प्रकट होते थे और ऐसे यज्ञ और ऐसे उत्सवों में कई देवता और स्वर्ग निवासी जो है वहां पर आते थे उस यज्ञ में भाग लेने के लिए, तो उनको भी भगवान श्री विष्णु का दर्शन मिलता था, संग प्राप्त होता था. तो इस तरीके से हम देखते हैं ऐसे स्वर्ग के निवासियों को भगवान का संग प्राप्त हो सकता है लेकिन फिर भी अपने पुण्य खत्म करने के बाद उनको स्वर्ग को छोड़ना पड़ता है और
गिर जाते हैं. continues, but the impersonalists who try to lose their individuality also lose both material and spiritual pleasure.
और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे जीवन का भोग करने के लिए कम से कम अपनी पहचान तो बनाए रखते हैं किंतु निर्विशेषवादी तो अपनी पहचान खोने का प्रयास करते हैं और इसके साथ ही वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों आनंद से वंचित हो जाते हैं.
Because in Brahman there's no ananda, so therefore you know pleasure has to come, real pleasure has to come from ananda. Ananda can only come really from spiritual pure spiritual practices.
क्योंकि निर्विशेषवादियों को ना आध्यात्मिक सुख मिलता है ना भौतिक सुख मिलता है, तो इसलिए जो है वो जो भौतिक सुख प्राप्त करते हैं वो ज्यादा अच्छे.
The next point make Prabhupada takes hit on the Buddhists.
और अगले वाक्य में प्रभुपाद जी है बौद्ध दार्शनिकों के ऊपर
write this down, please. The last destination of the Buddhist philosophers is you become just like a stone.
और ये भी बहुत विस्मय करने वाला वाक्य है जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं जो बौद्ध दार्शनिक हैं बौद्ध दार्शनिकों का अंतिम गंतव्य पत्थर की तरह हो जाना है.
अरे बाबू, you're not writing that down. Did you know that? Did you already know that? Then why aren't you writing it down? You're not a steady muni.
तो सबसे प्रार्थना है कि लिख सकते हैं क्योंकि शायद हमने ऐसे कभी ना सुना हो ना हम जानते हो.
Shrutidhar. You're not a Shrutidhar. There's not one Shrutidhar in this room. Shrutidhar. You're not a Shrutidhar.
तो हम श्रुतिधर नहीं है मतलब जो सुनकर याद रख सकते हैं इसलिए हम लिख लें तो ज्यादा अच्छा.
How many of you know what Shrutidhar means?
तो कितने लोगों को श्रुतिधर का मतलब पता है?
That's not too bad. That's half decent. That's good for starters. Okay.
ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबको इसका मतलब पता है.
So, who raised your hand? What is Shrutidhar?
कौन बता सकता है श्रुतिधर का क्या मतलब?
Okay, Prabhu, what is Shrutidhar? Yes. One who remembers by hearing once only. Haribol!
Haribol!
Or by reading once.
तो श्रुतिधर का मतलब है जो एक बारी कुछ चीज सुन ले या एक बारी कुछ चीज पढ़ ले तो उसको याद रहे.
And the West is called photographic memory.
और वेस्ट में कहा जाता है कि फोटोग्राफिक
मेमोरी. Some even in the West, that it's not a common thing, but even in the West, and still in India, there are some that have got this photographic memory, or there are some Shrutidhars still in maybe up in the Himalayas and like that. But you're not going to find them in Delhi.
तो हम देखते हैं पाश्चात्य देशों में कहीं कभी ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जिनकी बुद्धि बहुत तेज होती है वो बड़ी जल्दी से याद कर लेते हैं या हिमालय में ऐसे कुछ श्रुतिधर मिल सकते हैं कम से कम दिल्ली में नहीं है.
So the last destination of the Buddhist material and the last destination of the Buddhist philosophers is to become just like a stone.
और बौद्ध दार्शनिकों का अंतिम गंतव्य जो है वो पत्थर की तरह हो जाना है जो जड़ है जिसमें ना भौतिक और ना ही आध्यात्मिक क्रियाशीलता है.
Which is immovable and has neither material nor spiritual activity.
जिसमें ना भौतिक और ना ही आध्यात्मिक क्रियाशीलता है.
So we have mentioned before also, but not everyone was here, that Prabhupada made it clear that some stones are alive.
और प्रभुपाद जी ने इसको अच्छी तरीके से समझाया हमें बताया था कि कई पत्थर जीवित होते हैं.
So the end goal of a Buddhist is to become, they could become stone. They want to kill all consciousness, write it down. A Buddhist wants, so that's why nirvisesa shunyavadi.
तो जो बहुत दार्शनिक होते हैं उनको शून्यवादी भी कहा जाता है क्योंकि वो हर चीज शून्य बनाना चाहते हैं सब चेतना को खत्म करना चाहते हैं.
And again, a citation from the Ishupanishad.
और एक और ऐसा उद्धरण है श्री इशुपनिषद में.
To describe the destination of Buddhists who are, they're called nihilist. You know the word nihilist? They want to annihilate Atma. They want to wipe out Atma. They want to, in other words, they want to enter into total darkness. Of zero consciousness.
तो इसी विषय में भी ऐसे वाक्य में आता है कि ऐसे बहुत दार्शनिक जो हैं वो आत्मा हाँ है वो आत्मा का हनन करना चाहते हैं और गहरे अंधकार में जीवन में जाना चाहते हैं.
Okay, Ajit, do you know which shloka from Ishupanishad describes this exact phenomena? Translate.
तो क्या अजीत गुरांग प्रभु आप बता सकते हैं इशुपनिषद में कहां पर जो है इसका वर्णन आता है?
Sure. Yes, but what is the language? How many of you know the language of Ishupanishad and the Sanskrit word, heavy Sanskrit word that is used in this regard? How many of you know? Yes, Prabhu. Atmahana. Haribol. So tell the meaning of Atmahana, please. Killer of the soul. Haribol. Of course, we're out of time, so I can't really explain what the concept of pillar of the soul. The soul is described as eternal in the Bhagavad Gita, but the point is, the Ishvanishad is saying that must enter into the darkest ridges of ignorance so low like a stone. That's Prabhupada's point. Like a stone. No consciousness. So therefore, Atmahana. It is as good as annihilating the soul, although the soul is eternal.
So, his guest, Shripa Prabhu, has given a good answer. कि उपनिषद में हम एक शब्द सुनते हैं आत्मा हा जो आत्मा का हनन करने वाला है जो आत्मा को खत्म करने वाला है क्योंकि वो ऐसे बौद्धिक दर्शनों का इंगित करता है क्योंकि ये जो है वो आत्मा की चेतना को पूर्ण रूप से शून्य करना चाहते हैं खत्म करना चाहते हैं इसलिए वो गहरे तमोगुण अंधकार में जाते हैं उनको पत्थर का शरीर प्राप्त होता है ऐसे योनि मिलती
है
और फिर प्रभुपाद जी जो हैं वो ऐसे जो कर्म में श्रम करने वाले लोग हैं उनका वर्णन कर रहे हैं
still subject to repeated birth and death
और फिर पुनरापि जननम पुनरापि मरणम में फंसे हैं
now listen to the next statement another mind blower
और अगले वाक्य सुनिए वो भी बहुत ही आश्चर्यजनक है
therefore after finishing the results of pious activities last sentence on the page
अतएव पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर
the karmis return to this planet in the form of rain
कर्मी जन पुनः इस लोक में बरसात के रूप में लौट आते हैं
and they begin their life as grass and plants in the evolutionary process
और विकास क्रम में घास तथा पौधों के रूप में जीवन बिताते हैं
so from devas to grass on this planet.
तो वो देव योनि से जो है वो घास की योनि में आ जाते हैं।
Coming down to the rain, write it down. You don't know these things. Come on, Jiv Jago. You do not know these things. Can you sit there and tell me you knew this, Prabhu? Did you know this? Then why aren't you writing? You're not a Shrutidhar. Then why aren't you writing? How are you going to learn this philosophy? Prabhupada says, remember means write it down.
तो महाराज कह रहे हैं बार बार ये कह रहे हैं सब भक्तों से कि आप कृपा करके इसको लिखे तो आप भूल जाएंगे आप श्रुति दर नहीं है आपको याद नहीं रहेगा और प्रभुपाद जी कहते थे कि याद करना मतलब उसको लिखित रूप में लिख देना तभी आपको याद रहेगा तो इसको आप कृपा करके लिखते रहिए जो महाराज कह रहे
हैं
कितने लोगों को इसका मतलब पता है मन सुमन मत्यो मंद भाग्य हाथ खड़ा करें।
You don't know. You're new to Krishna consciousness.
Yes, Maharaj.
How new is he?
कितने साल हो गए?
Huh?
1 year.
All right, you have a slight excuse at 1 year. Choto excuse at 1 year. But if you don't write down, you won't learn because you're not a Shrutidhar. Translate.
तो आपको माफ किया जाता है क्योंकि आपका एक साल का ही अनुभव है कृष्णा कॉन्शियसनेस में लेकिन आप याद तभी रख पाएंगे आप लिख लीजिए
मनस वन मनयो मन भाग्य सो हाउ मेनी यू नो द मीनिंग
कितने लोगों को पता है मन सुमंद मतयो मंद भाग्य हाथ खड़ा करें
केशव आई नो दिस विद एंथुसियाज्म लेट्स सी दोस हैंड्स अगेन प्लीज ऑलराइट व्हाट इज द मीनिंग Yes, in Kali Yuga, the memory is very less, short duration of memory.
तो मन का मतलब होता है मन बुद्धि जिसकी बुद्धि जो है बहुत धीमी हो या धीमी रफ्तार से चले तो कलयुग का ये पहचान है कलयुग के जीवों का.
So Prabhu, is your body situated in Kali Yuga, sort of? Huh? Your body is more or less situated in Kali Yuga. Translate.
तो महाराज पूछ रहे हैं कि आपका आपके पास कलयुग का शरीर है या नहीं
सो मनस मन मतयो मन भाग्य शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मेमोरी दैट्स व्हाई प्रभुपाद सेड रिमेंबर मींस टू राइट इट डाउन डिड यू राइट दैट डाउन प्रभुपाद्स फेमस स्टेटमेंट रिमेंबर मींस टू राइट इट डाउन आई डिडंट नो दैट आइदर
इसलिए आप कृपा करके लिख लीजिए कि कलयुग के शरीर जो है वो मन बुद्धि का होता है और हमारा कलयुग का शरीर है, इसलिए जो भी हम सीखे हैं उसको आप लिख लीजिए.
So this is astonishing how the devas are coming down through the rain and are then become weeds in this material on this planet. This pretty heavy fall down, you know, pretty. And so Prabhupada saying it's starting all over again in the cycle. The samsara cycle.
हम देखते हैं कैसे देव जो देव योनि में थे वो जो है उनका एक भारी पतन हो जाता है और उस भूमि में आ जाते हैं और यहाँ पर उनको कैसा शरीर प्राप्त होता है घास का पौधों का और फिर से उनका जो विकास क्रम है वो शुरू होता है.
So I'll conclude by telling a short Prabhupada pastime.
और मैं छोटा सा प्रभुपाद जी का लीला आपको बताऊंगा.
I've told this before, but a lot of you weren't present.
मैंने पहले भी बताया लेकिन आप में से कई लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे.
Srila Prabhupada was on a morning walk in New York City.
और प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक पे गए न्यूयॉर्क में.
And there was a weed growing out of the wall.
और वहाँ पर एक जंगली पौधा जो है दीवार से निकल रहा था.
Do you know this story? No? It's a juicy story. You can include it in your classes. It's a juicy story.
तो इस छोटी सी कहानी में बड़ा रस है तो आप ध्यानपूर्वक से सुन सकते हैं.
So you know, so Prabhupada pointed at the weed and said to the devotees, "What is that?"
अब प्रभुपाद जी ने उस जंगली पौधे को निकलते हुए देखा और अपने भक्तों से पूछा, ये क्या है?
If you were walking with Prabhupada, he would sometimes ask these loaded questions, you know, loaded question, you know, the concept of loaded question.
और प्रभुपाद जी कभी-कभी ऐसे टेढ़े प्रश्न पूछते थे.
You might be aware it's a trick question, so you don't know how to answer it.
और ऐसे प्रश्न बड़े टेढ़े होते थे, ये नहीं पता था कि इसका कैसे उत्तर देना.
So he's pointing at a weed, and he says, "What is that?"
उन्होंने एक जंगली पौधे की तरफ इशारा किया और बोला कि बताइए ये क्या है.
So somebody takes a risk.
और किसी ने जो है वो एक रिस्क लिया और उत्तर देने का प्रयास किया.
They must have sensed that it was a trick question.
और उनको इस बात का अंदेशा तो हो गया था कि ये देख एक टेढ़ा प्रश्न है.
It's a weed, Srila Prabhupada. They had some doubt. They knew it was a trick question.
उन्होंने कहा प्रभुपाद जी एक खरपतवार है या एक जंगली पौधा है.
He said, "No, it's a fallen demigod."
और प्रभुपाद ने उसको देख के कहा कि ये एक पतित देवता है.
And again, he said, "They come down in the rain." So here we see what Prabhupada was saying in the purport he said on that morning walk. Also, they come down in the rain. So, those who want to go to the heavenly planet is a very risky business.
तो बहुत ही खतरनाक चीज है, रिस्की है कि हम जो है वो स्वर्ग के लिए कोशिश करें क्योंकि वहां से किसी के पतन होकर वो इस भौतिक संसार में गिरकर उसको ऐसा शरीर प्राप्त हो सकता है.
So we'll stop there.
हम यहाँ पर विराम देंगे.
गुरु श्री प्रभुपाद की जय. ग्रंथराय श्री चैतन्य चतुर्मूर्ति की जय. नित्य गौर प्रभु नंदी हरि हरि बोलो.